Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Ishavasya Upanishad, presented by Swami Sri Advaitananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ishavasyamidam sarvam yatkincha jagatyam jagat. तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गुरुदह कस्य स्विद्धनम्। इस श्रुति पर विचार चल रहा है। इस मंत्र के अंदर जो मुमुक्षु ज्ञान मार्ग पर चलना चाहता है, ज्ञान की जिज्ञासा करता है और मुक्त होना चाहता है, ज्ञान मार्ग जिज्ञासु के लिए होता है, मुमुक्षु के लिए होता है। ज्ञान मुक्ति का साधन है, रीति ज्ञानान्न मुक्ति ही। बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति का अर्थ मृत्यु नहीं है, मृत्यु से मुक्त नहीं होना है। और एक दृष्टि से मृत्यु से भी मुक्त होना है, दोनों भी बात है। परंतु हम जो देखते हैं, हम जो मानते हैं, हम जो जानते, इस मृत्यु की बात नहीं, इस मृत्यु से मुक्त नहीं, मुक्ति नहीं है। एक जीव के अंदर अनादिकाल से एक ऐसा बंधन पड़ा हुआ है कि जिसको जीव नहीं जानता है। श्रुति उस बंधन से मुक्ति के तरफ संकेत करती है। और उस बंधन से जीव को छूटना है, और उस बंधन से केवल ज्ञान ही छुड़ा सकता है। इसलिए शास्त्रों ने, महापुरुषों ने परमात्मा को जानने के लिए निर्देश दिया है। श्रुति आदेश भी देती है, निर्देश भी देती है। आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, ये श्रुति आदेश दे रही। आदेश जो जीव मुक्त होना चाहता है उसको श्रुति का आदेश का पालन करना चाहिए, अर्थात आज्ञा का पालन करना चाहिए। आदेश का मतलब होता है आज्ञा। श्रुति की आज्ञा है कि तुम्हें क्या करना है। तो श्रुति का आदेश भी होता है और श्रुति निर्देश भी करती है। श्रुति द्वारा जो निर्देशित तत्व है, उस निर्देशित तत्व को जानने की जिज्ञासा करना है। सूत्रकार भी कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और श्रुति भी कहती है तत्विज्ञानार्थम गुरुमेवा विगच्छेत श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उस परमात्मा को जानने के लिए विज्ञानार्थम, विशेष ज्ञानार्थम, साक्षात अपरोक्ष ज्ञानार्थम गुरु मेवा भी गच्छेत। तो कहा कि जब श्रुति ही बताती है, श्रुति ने ही तो सब बता दिया, फिर गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है। क्या कहा कि सब पुस्तक में तो है महाराज, फिर आपके पास आने की, पूछने की, सुनने की क्या जरूरत है, हम तो घर में पुस्तक पढ़ लेते हैं। कोई कहते महाराज आजकल तो सब टीवी में आता है, घर में देख लेते हैं। क्या ऐसे लोगों को आप किस कोटि में रखोगे? जिज्ञासा कोटि में रखोगे, मुमुक्षु कोटि में रखोगे, भक्त कोटि में रखोगे, धर्म कोटि में रखोगे, किस कोटि में रखोगे? कोई कोटि नहीं रखी जाती है। ये जड़ बुद्धि है, आलसी, क्या पुरुषार्थहीन, कर्महीन भी और पुरुषार्थहीन भी। तो क्या ऐसे लोगों को कितने जन्म तक सुनते रहेंगे, टीवी में देखते रहेंगे तो ज्ञान होगा? यदि ऐसी ही बात रहती तो श्रुति ये आदेश नहीं देती है, ये निर्देश नहीं देती है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः। भगवान भी गीता में कहते हैं कि श्रुति निर्देश किसका करती है? ओंकार का निर्देश करती है। ओंकार रूप तत्व को प्राप्त करो, तत्पद से ब्रह्म का निर्देश करती है, सत शब्द से आत्मा का निर्देश करती है। भगवान ने गीता के अंदर ये तीन पद दिए कि नहीं? ओम तत् सत् इति निर्देश हो, ये श्रुति का निर्देश है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि श्रुति ये निर्देश देती है तुम्हें, ओंकार के माध्यम से श्रुति ये बताती है कि तुम्हें उस परमात्मा को जानना जो ओंकार स्वरूप है, अर्थात जो सगुण साकार भी है, सगुण निराकार भी है और निर्गुण निराकार भी है, और इसके अतिरिक्त जो चिन्मात्र है, ये परमात्मा का संपूर्ण रूप है। संपूर्ण रूप क्या? ये परमात्मा का संपूर्ण रूप है। सगुण साकार परमात्मा को क्यों जानना है? सगुण साकार परमात्मा को बिना जाने तुम्हारे स्थूल प्रपंच से आप निराशक्त नहीं हो सकते हैं। जो स्थूल प्रपंच में, स्थूल विषयों में जो तुम्हारी आसक्ति है, जो तुम्हारी मोह है, ममता है, जिसको घर को मेरा कहते हो, पुत्र को मेरा कहते हो, उनके देह को लेकर के ही मेरा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? ये जो स्थूल वस्तु में तुम्हारी आसक्ति है, अर्थात मोह है, ममता है, संलिप्तता है, संग है, ये कुसंग से तुम्हें बचाने के लिए शास्त्र या महापुरुष परमात्मा का साकार रूप से वर्णन करते हैं। मूर्तंचा मूर्तंच, मूर्त रूप का वर्णन किया जाता है, अर्थात साकार रूप का वर्णन किया जाता है। परमात्मा के साकार रूप को भी जानना चाहिए, उसका निषेध नहीं है। श्रुति विधान करती है। देखो, दो प्रकार की श्रुतियां होती है, एक विध्यर्थक होती है, एक निषेधार्थक होती है। तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, जैसा आप जो सच्चा वैद्य होता है ना, डॉक्टरों की बात नहीं करता हूं मैं। डॉक्टर तो कहते हैं बस हमारी गोली खाओ, बाकी जो तुम्हारा तुम्हें खाना है, जो पीना है, जैसा करना है करते रहो, परंतु गोली हमारी खाओ। तुम्हारा रोग दूर होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं उनका, क्या उससे उसका कोई मतलब नहीं है। वो रोग दूर होने के लिए दवा नहीं देता है, ध्यान रखो। वो जो आपको दवा दे रहा है ना, अपनी अपना ग्राहक बनाने के लिए, आप अपना ही ग्राहक बना रहे। कुछ कुछ तो डॉक्टर ऐसी दवा देते हैं कि वो जल्दी दुकानों पर भी ढूंढने पर नहीं मिलती है, उन्हीं के ही के इसके पास मिलेगी। क्या वो जिस केमिस्ट का जो ये करेंगे उसी के पास ही मिलेगी, जहां से डॉक्टरों को कमीशन मिलता है, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। तो अब बताओ कि वो दवा तुम्हारे लिए दे रहे हैं कि अपने लिए दे रहे हैं, उनकी बात नहीं करता हूं मैं। परंतु सच्चा वैद्य जो रहता है, वो सच्चा वैद्य दवा तो देता ही देता है, परंतु उसके साथ कहता है कि भाई तुम्हें इसका पालन करना पड़ेगा। ये पालन करने के लिए तैयार हो क्या? तब तो मैं तुम्हें दवा देता हूं, तब तो मेरी दवा तुम्हारे रोग को निश्चित दूर करेगी, वो गारंटी देता है। परंतु शर्त तो उसकी यही है कि पथ्य का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो पथ्य तुम्हें बताया जाता है वही तो रोगों का वर्धक होता है, वही रोगों का कारण होता है। दवा रोगों को दूर नहीं करती है, ध्यान रखो। पथ्य का पालन करना पड़ेगा तो बिना दवा से भी तुम ठीक हो सकते हो। ये तुम्हारी भ्रांति है कि हमने दवा ली और हम ठीक हो गए। पथ्य का यदि पालन करोगे तो रोग ही निर्माण नहीं होगा, पहली बात तो, और हो भी गया तो बिना दवाई का ही दूर हो सकता है। सच्चा वैद्य पहला शर्त लगा देता है कि तुम्हें ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा ऐसा करना है आदि करने का भी विधान बताता है और न करने का भी बता देता है, निषेध करता है कि ये नहीं करना है। वो सच्चा वैद्य है, सच्चा वैद्य, समझिए ना, वो तुम्हारा हितैषी है, इसलिए उसकी बात तो तुम्हें कठोर लगती है कि भाई जी इसके तो बिना मैं नहीं रह सकता हूं। क्योंकि हम तो उसमें फंसे हुए हैं, उसके बिना हम समझते हैं कि वो नहीं खाएंगे, नहीं करेंगे तो हम कैसा जी सकते हैं। ये तो दुराग्रह है, उस दुराग्रह का ही कारण होता है दुख, उस दुराग्रह से ही हम पीड़ित हो जाते हैं। श्रुति भी यहां कहती है क्योंकि जीव को सबसे बड़ा रोग, जीव का रोग क्या, ये डॉक्टर ये वैद्य तो आपके शरीरों और शरीर के रोगों को दूर कर सकते हैं, परंतु क्या जीव के रोग को मिटा सकते हैं, जीव के रोग को दूर कर सकते हैं? नहीं। जीव के रोगों को दूर करने वाला तो एक ही वैद्य है, वैद्यो नारायण हरि। क्या ये केवल परमात्मा ही वैद्य है और वही तुम्हारे भवरोग को भवरोग से मुक्त करता है। तो उस वैद्य रूप परमात्मा की ही तुम्हें आदेश भी है और निर्देश भी है और निषेध भी है। किस रूप में? वेदों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, पुराणों के रूप में, महापुरुषों के रूप में, ये सब परमात्मा ही है, परमात्मा के ही रूप है। महापुरुषों के पास जाओगे तो महापुरुष भी आपको यही बताएंगे, पुराणों के पास जाओगे तो पुराण भी यही बताएंगे, शास्त्र के पास जाएंगे तो शास्त्र भी आया यही बताएंगे, वेदों के पास जाओगे तो वेद भी यही बताएंगे। परंतु सबसे हितैषी वाक्य जो है आप्त वाक्य केवल श्रुति प्रमाण है। तो क्या गुरु प्रमाण नहीं है? नहीं, यदि गुरु आप्त वाक्य के द्वारा यदि आपको बोध करा रहा है तो वो गुरु वाक्य प्रमाण है, उसका शास्त्र निषेध नहीं करता है। इसलिए तो शास्त्र ने उसमें एक शर्त लगाई है, उस गुरु का वाक्य प्रमाण है कि जो श्रोत्रिय हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। ये दो शब्द उसमें क्यों दिए हैं? क्योंकि श्रोत्रिय का मतलब होता है श्रुति प्रमाणाश्रित, अर्थात वेद युक्त, वैदिक, जो वेद पठित है अर्थात शास्त्र पठित है, ऐसा जो श्रोत्रिय है, पहली शर्त। और दूसरी शर्त है कि ब्रह्मनिष्ठ, परिच्छिन्नता में निष्ठा होने वाला नहीं, जो ब्रह्म है अर्थात जो व्यापक तत्व है, जो कणकण में व्याप्त है, उसमें उसकी बुद्धि स्थिर होना चाहिए। निष्ठा का मतलब क्या होता है? उससे उसकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होना चाहिए, स्थागति निवृत्तो नि उपसर्ग पूर्वक। निष्ठा में स्था धातु है, स्था का मतलब जिसमें किसी प्रकार की गति नहीं है, स्थिर है। निश्चय करके जो स्थिर हो गया है, जिसकी बुद्धि पहला विवेक वैराग्य षड् संपत्ति से प्राप्त होकर शुद्ध होकर के जो बुद्धि स्थिर हो गई है, उस बुद्धि की उस अवस्था का नाम निष्ठा है। हाथ जोड़ने का नाम निष्ठा नहीं है, दंडवत करने का नाम निष्ठा नहीं है। निष्ठा बुद्धि की गति निवृत्ति का नाम निष्ठा है। बुद्धि में कभी भी किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं होना चाहिए, ऐसा। आप और वो भी किसमें? ब्रह्मनिष्ठ, व्यापक तत्व में निष्ठा हो, निष्ठता होना चाहिए, क्योंकि व्यापक तत्व ही अद्वैत है, अभेद है, अपरिच्छिन्न है। परिच्छिन्नता में तो राग द्वेष होते हैं। क्या? परिच्छिन्नता में राग द्वेष होते हैं, और उस राग द्वेष से जब राग द्वेष है तो उसका कारण भी अंदर है। बिना कारण का तो कार्य हो नहीं सकता, राग द्वेष तो कार्य है। इस राग द्वेष का कारण क्या है? कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान है। उस अज्ञान के कारण ही परिच्छिन्नता हो रही है, और परिच्छिन्नता के कारण ही राग द्वेष निर्माण हो रहे हैं। राग भी दुख का कारण है और द्वेष तो है ही। तो कहने का तात्पर्य है कि इसलिए ब्रह्मनिष्ठ। इसका अर्थ यह नहीं है ब्रह्मनिष्ठ साकार का निषेध करता है या साकार का तिरस्कार करता है, ऐसा नहीं। तिरस्कार करेगा कैसा? क्योंकि जो जिस तत्व में उसकी निष्ठा है, वो तत्व तो जो साकार है, उस साकार के अंदर भी है कि नहीं है? है तो साकार का द्वेष कर सकता है। इसलिए वेदांती वेद जो है वो किसी का निषेध नहीं करता है। मतलब किसी रूप का निषेध नहीं है, किसी गुण का निषेध नहीं है, किसी देश का निषेध नहीं, किसी काल का निषेध नहीं, किसी वस्तु का निषेध नहीं है। परंतु निषेध भी करती है। क्या निषेध भी करती है? और किसका निषेध करती है और किसका विधान करती है? उस व्यापक तत्व का तो विधान करती है, परंतु व्यापक तत्व में जो प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक का निषेध करती है। क्या श्रुति वस्तु का निर्देश नहीं करती है, परंतु उस वस्तु के बोध में, वस्तु के ज्ञान में जो प्रतिबंधक है, वस्तु के यथार्थ ज्ञान में, एक सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान की बात नहीं होती, जो आपके दुख का निवर्तक ज्ञान है, उस ज्ञान में जो प्रतिबंधक होता है उसका श्रुति निषेध करती है। बाकी ये तुम्हारा जो दृश्य प्रपंच है, उस दृश्य प्रपंच का निषेध यदि करती तो श्रुति ये नहीं कहती है सर्वम का सर्वम खल्विदम ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, क्योंकि श्रुति जानती है, समझना, कि ये जो भी है, चाहे रूप हो, चाहे नाम हो, चाहे गुण हो, चाहे धर्म हो, जाति हो, देश हो, काल हो, जो भी है वो सब ब्रह्म ही है। व्यापक तत्व, क्योंकि व्यापक तत्व भी उसके अंदर मूल अधिष्ठान के रूप में है, तो अधिष्ठान से अधेय वस्तु कभी भी भिन्न नहीं होती है, ध्यान रखो, अधिष्ठान स्वरूप ही होती है, भिन्न दिख सकती है परंतु होती नहीं है। इस तत्व को श्रुति जानती है, और इस ज्ञान में जो बाधक है, प्रतिबंधक है, उसका श्रुति निषेध करती है। इसका प्रतिबंधक सबसे पहले है उसी वस्तु का अज्ञान। क्या अब मान लो अब ये उठा दिया मैंने और आपको बता दिया, तो आप इसको क्या कहोगे? कहा कि मारे पुस्तक है, पुस्तक। हम कहते बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत, ये पुस्तक है नहीं। कहा कि चलो कागज, अब उसका निषेध करेंगे पुस्तक का, एक एक पन्ना अलग अलग कर दिया तो पुस्तक होगा? हा? तो तुम्हारी पुस्तक मानना इसको, या पुस्तक कहना, या पुस्तक रूप से जानना, कितना सत्य होगा? झूठ होगा कि नहीं होगा? फिर पूछा, कहा महाराज कागज है। क्या कागज है? हम कागज के भी टुकड़े टुकड़े करेंगे तो कागज रहा? हा? नहीं रहा। कागजपन का भी निषेध करेंगे। अब क्या कहोगे? कहा कि कागज का टुकड़ा है, अब टुकड़े के भी फिर टुकड़ा करेंगे और क्या करेंगे, उसको चबा करके थूक देंगे तो क्या हो जाएगा? कागज पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा कि नहीं? अब तुम्हारा कागज भी रहा, क्या टुकड़े भी रह गए? नहीं। ऐसा यदि हम निषेध करते 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 जाएंगे तो आखिर कहां तक, कहां जाओगे तुम? हाँ? कहां जाओगे? जो जो आप करते जाओगे, जिसका विधान करते जाएंगे और हम उसका निषेध करते जाएंगे, तो अंत में तुम अपनी आत्मा पर ही जाओगे, और कहीं जा सकते हो? उसका निषेध कोई नहीं कर सकता है। फिर जिसका निषेध नहीं होता है, उसी तत्व में जो प्रतिबंधक है उसी का ही यहां श्रुति निषेध करती है। ये ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, ये स्तुति का क्या है? निर्देश है। निर्देश ये ज्ञान मार्ग में चलने वाले या ज्ञान को जो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा जो जिज्ञासु है या ज्ञान के द्वारा मुक्त होना चाहते हैं, बंधन से छूटना चाहते हैं, ऐसे जो मुमुक्षु है, उस मुमुक्षु के लिए ये विधान श्रुति करती है। क्या करती है? ये विधान करती है। क्या विधान करती है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत, चाहे जीव निर्मित जगत हो चाहे ईश्वर निर्मित जगत हो, दो प्रकार का जगत है। इसलिए जगत्याम जगत, पहला जगत्याम का अर्थ होता ईश्वर, ईश्वर के जगत में। जगत्याम जगत जीव का जगत, पहला ईश्वर का जगत है, फिर जीव का जगत है। इन सभी में चाहे ईश्वर, ईश्वर जगत हो चाहे जीव जगत हो, दो ही जगत है और तीसरा नहीं है, तीसरा परमात्मा है। तीन वस्तु होती है वेदांत में, इसलिए मुख्य तीन वस्तु मानी है। क्या है? स्वाध्याय वाले लोगों को तो कदाचित मालूम होगा, आप लोगों को बता देता हूं। एक है अधिष्ठान, दूसरा है आधार और तीसरा है अधि। ये तीन वस्तु है, तीन वस्तु त्रिपुटी है, समझना। जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, जगत का आधार मायोपाधिक ईश्वर है। या वेदांत शास्त्र माया भी कहता है, अविद्या भी कहा जाता है, और उसमें अधेय जीव और जीव निर्मित देह, ये अधेय है। जीव भी अधेय है और देह भी अधेय है। अधेय वस्तु उसको कहती है, वो अधेय वस्तु दिखती है परंतु होती नहीं है, और आधार वस्तु भासती है परंतु होती नहीं है। अधिष्ठान वस्तु भासती भी नहीं है और अधिष्ठान वस्तु दिखती भी नहीं है परंतु होती है। क्या? अधिष्ठान भासता भी नहीं है और अधिष्ठान दिखता भी नहीं है परंतु होता है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता है।